इंस्पेक्टर के मना करने के बावजूद क्रिस्टल पूरी रात इशिका के पास बैठी रही। अगली सुबह जब उसने इशिका को देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, साथ ही उसे काफ़ी पसीना भी आया हुआ था। इशिका की ऐसी हालत देखकर क्रिस्टल घबरा गई थी। उसने तुरंत इशिका को जगाया। इशिका के पेट के निचले हिस्से में पीरियड आने की वजह से कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। क्रिस्टल इशिका का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, तभी इशिका ने उसकी कलाई पकड़कर बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलो। हाँ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, क्रिस्टल ने जल्दी से जवाब दिया और इशिका को पकड़कर बाथरूम की तरफ ले जाने लगी। इशिका अंदर बाथरूम में थी और क्रिस्टल उसका बाहर इंतज़ार कर रही थी। इशिका की हालत देखकर क्रिस्टल कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। उसने धीरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इशिका सच बोल रही हो? मैंने खुद उसकी हालत ख़राब देखी है। उसके चेहरे का रंग अचानक से सफ़ेद हो गया और इतना पसीना, क्या सच में वो अनीमिक है? क्रिस्टल कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि रिपोर्ट्स कुछ और कह रही थी और इशिका की हालत कुछ और ही बता रही थी। वहीं दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर के विजिटर रूम में मालविका को लाया गया था। उससे मिलने के लिए आयशा आई थी। आयशा को देखते ही मालविका खुश हो गई। आयशा, तुम यहाँ? तुम टाइम निकालकर मुझसे मिलने के लिए आई हो? मालविका ने मुस्कुराकर कहा। अचानक मालविका का चेहरा उदास हो गया। वो बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये अच्छी जगह नहीं है। इस तरह की जगह जिंदगी में बैड लक लेकर आती है। उसने देखा आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे मालविका को लगा आयशा उदास है। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? उस इशिका ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? अचानक आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने भौहें उठाकर कहा, हाँ, मैं इशिका की वजह से आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। इस बार वो खुद ही किसी मुसीबत में फंस गई है। तब तो बहुत अच्छा हुआ, मालविका ने सिर हिलाकर कहा। इस बार उसने किसका अपमान किया था जिसका बदला लेने के लिए उसने उसे सबक सिखाया? वो घमंडी लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। मालविका अपने इमोशंस छुपा नहीं पाती थी। आयशा को कभी कभी हैरानी होती थी कि मालविका ने दोनों लड़कियों को बदल दिया था और ये बात मालविका के पेट में अब तक पच कैसे रही थी। जो भी हो, आयशा के हिसाब से मालविका ने जिंदगी में एक ही सबसे अच्छा काम किया था और वो था इशिका की जगह उसे सिंघानिया फैमिली की जायज़ औलाद बनाना। क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? इस बार क्या किया है उसे इशिका ने? मालविका ने फिर से पूछा तो आयशा को होश आया। इशिका की हालत के बारे में सोचकर मालविका को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। उसने कहा, इस बार उसने किसी की इंसल्ट नहीं की है, बल्कि उसने किसी का मर्डर कर लिया है। आपको पता है कि वो जेल में है मालविका आंटी? अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। उसने किसी को मारा है तो पक्का उसे फांसी होगी, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी, मालविका ने हंसकर कहा। मालविका को नहीं पता था कि इशिका पर किसकी हत्या का आरोप आया है। उसे खुश देखकर एक पल के लिए आयशा को उस पर दया आई। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसने आशीष अंकल को मार डाला है मालविका आंटी। मालविका ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बेपरवाही से बोली, क्या फर्क पड़ता है, उसने किसी को भी मारो, उसे जेल दो। अचानक मालविका बोलते हुए रुक गई और उसे एहसास हुआ कि आयशा ने किसका नाम लिया है। वो तुरंत नम आंखों से बोली, क्या कहा तुमने? उसने, आशीष, मेरे भाई आशीष को मार डाला। पूरी बात पता चलते मालविका की आंखों में आंसू थे। हालांकि उसका भाई कोई अच्छा इंसान नहीं था, फिर भी उन दोनों के बीच में बहुत प्यार था। आयशा ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, मालविका आंटी, मैंने सुना था कि आशीष अंकल ने जुए में कुछ पैसे कमा दिए थे। इशिका उनकी भांजी है, इसलिए मदद की उम्मीद में उन्होंने इशिका से 1 करोड़ रुपए मांगे थे। इशिका उनसे मिलने के लिए गई थी, तब उन दोनों के बीच में हाथापाई हो गई, जिसमें इशिका ने उन्हें धकेल दिया। गलती से वो एक रोड पर जाकर गिरे और उनके दिल में छेद हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वो तो डॉक्टर मर्चेंट है ना, क्या उसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं थे जो वो अंकल की मदद नहीं कर सकी? आयशा हमेशा की तरह शब्दों के साथ खेल रही थी। वो जानती थी कि पूरे मामले को मालविका के सामने कैसे रखना है। वो लड़की हमेशा मेरे लिए मुसीबत रही है, मुझे उसे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। उसने 1 करोड़ रुपए के लिए मेरे भाई को मार डाला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बदला लूंगी मैं उससे, मालविका ने रोते हुए कहा। मालविका की बातें आसपास के पुलिस वालों ने सुनी तो उन्होंने मालविका को चुप कर दिया। वो खुलेआम किसी को मारने का कह रही थी। आयशा ने उसके हाथ को सहला कर कहा, प्लीज आप खुद को संभालिए, आशीष अंकल और इशिका दोनों के साथ में आपका रिश्ता है, इसलिए मुझे लगा आपको पता होना चाहिए और मैं आपको बताने के लिए आई थी। मैं ठीक हूँ आयशा, तुम मेरी परवाह मत करो, मालविका ने अपने आंसू साफ करके कहा। आयशा वहां मालविका को भड़काने के लिए आई थी। वो बोली, अब उसने जानबूझकर मारा हो या गलती से, लेकिन सब यही बोल रहे हैं कि उसने गलती से ही मारा है, उसे ज्यादा सजा भी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल की जेल होगी और कुछ नहीं। सिर्फ 7-8 साल? मालविका ने अफसोस जताते हुए पूछा। हाँ, आगे का कुछ कह नहीं सकते। मुझे लगा कि आपके साथ साथ उससे भी मिल लेती हूँ। वो जैसी भी है मेरी बहन है। सुना है उसको यही डिटेंशन सेंटर में किसी सेपरेट रूम में रखा गया है। आंटी, मुझे लगता है आपको भी उससे मिलना चाहिए। आयशा ने हर बार की तरह मासूम और अच्छा बनने का दिखावा किया। आयशा का वहां आने का एक ही मकसद था कि वो मालविका को आशीष की मौत के बारे में बता सके और साथ ही ये भी कि इशिका इसी जेल में है ताकि वो उसे नुकसान पहुंचा सके। मालविका से मिलने के बाद आयशा वहां से जाने लगी। आयशा वहां से जाती उससे पहले मालविका ने उसका हाथ पकड़कर इमोशनल होकर कहा, आगे से यहां मत आना। अच्छे घरों की लड़कियां यहां नहीं आती हैं। तुम नक्श से शादी करो और अपनी जिंदगी में खुश रहो। आयशा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी बात पर हामी भरी और फिर वहां से चली गई। आयशा वहां से जा रही थी तब उसने देखा कि क्रिस्टल वहां पर बाथरूम के पास खड़ी थी। उसके साथ एक लेडी कांस्टेबल भी थी। क्रिस्टल को देखते ही आयशा ने उसे पहचान दिया था। वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। लेडी कांस्टेबल ने क्रिस्टल से कहा, सुबह सस्पेक्ट के लॉयर फिर से आए थे। वो एंटिसिपेटरी बेल चाहते हैं। हमने सस्पेक्ट की हालत सुबह देखी थी और पता चल रहा है कि वो अनेमिक है, तो क्या हमें उसकी जमानत को मंजूरी दे देनी चाहिए डॉक्टर डिसूजा? क्रिस्टल सोच में पड़ गई थी। सुबह उसने भी इशिका की हालत देखी थी। वो जमानत के लिए मंजूरी देने ही वाली थी कि तभी माधव वहां पर आया। उसने उनकी बातें सुन ली थी। माधव ने सार्केस्टिकली मुस्कुराकर कहा, क्या आप लोग भी उसकी बातों में आ गए? वो लड़की नाटक कर रही है। वो नाटक नहीं कर रही है, क्रिस्टल ने सख्ती से कहा। माधव ने क्रिस्टल की तरफ देखा और हल्के गुस्से में बोला, कल रात इतना कुछ होने के बाद भी तुम उसका फेवर कर रही हो? मुझे लगा था अब तो सब सामने आ गया होगा। तुमने ही कहा था कि वो बीमारी का झूठा बहाना बनाकर जमानत नहीं लेगी। तुमने उसकी जिम्मेदारी ली थी ना, अब क्या हुआ? तुम आ गई ना उसकी बातों के जाल में? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर माधव, वो सच में ठीक नहीं है, क्रिस्टल ने अपने गुस्से को काबू करके कहा। माधव को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, कितनी नाजुक है ना वो, एक दिन में ही बीमार पड़ गई जबकि कल रात तो बिल्कुल ठीक थी। इसे ड्रामा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे डॉक्टर डिसूजा?
जैसे ही क्रिस्टल उसकी बात का जवाब देने वाली थी, आयशा तुरंत बाहर निकल कर आई। यही सही मौका था। उसने अपने चेहरे को उदास किया और धीरे से कहा, क्या आप यहाँ मेरी बहन इशिका के बारे में बात कर रहे हो? आयशा को वहाँ देखकर क्रिस्टल ने भौहें चढ़ाकर पूछा, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी बहन की हेल्थ के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, आयशा ने जवाब दिया। क्रिस्टल जानती थी कि इशिका और आयशा बहनें हैं। घर पर आयशा इशिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, लेकिन स्कूल में सबके सामने वो उसके साथ काफी प्यार से पेश आती थी। इस वजह से क्रिस्टल को पता नहीं था कि उनका रिश्ता कैसा है। क्रिस्टल ने अकेले में बात करने के लिए हाँ कह दी थी। वो आयशा की तरफ दूसरी ओर गई। उसने परेशान चेहरे के साथ पूछा, इशिका को क्या हुआ है आयशा? शायद उसके पीरियड्स आ गए होंगे क्रिस्टल, तुम तो जानती हो कि हम गर्ल्स में ये कितना मुश्किल रहता है। बस इसी वजह से इशिका की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, आयशा ने धीरे से जवाब दिया। आयशा की बातें सुनकर क्रिस्टल को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन आयशा का खेल यही नहीं रुकने वाला था। उसने क्रिस्टल की बातें सुन ली थी तो वो क्रिस्टल का हाथ पकड़कर मासूम बनते हुए बोली, पीरियड्स में फ्लो की वजह से हम कमजोर और एनीमिक लगने लगते हैं, और यही इशिका के साथ हो रहा है। ये बात हमें पता है, उन सबको नहीं पता है, तो क्यों ना हम उसे एनीमिक बताकर उसकी जमानत करवा लें? प्लीज तुम पेपर से साइन कर दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बोलते हुए उसने क्रिस्टल का हाथ पकड़ लिया था। क्रिस्टल ने गुस्से से आयशा का हाथ झटका और बोली, सॉरी मैडम, लेकिन यहाँ ना तो रिश्वत से और ना ही सिफारिश से काम होता है। क्रिस्टल तुरंत इंस्पेक्टर माधव के पास आई और बोली, उसे कुछ नहीं हुआ है, आप उसे डिक्टेशन सेंटर भेज सकते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी समझ गई, माधव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। क्रिस्टल वहां और नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत फोरेंसिक डिपार्टमेंट में चली गई। वहीं दूसरी तरफ इशिका जब बाथरूम से बाहर निकली तो उसे देखकर लेडी कांस्टेबल ने सख्ती से कहा, इतना दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हम सब औरतें ही हैं, सबको पीरियड्स आते हैं, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही नाजुक नहीं बन रही हो क्या? चुपचाप अपनी सेल में जाओ और हियरिंग का इंतजार करो। इशिका ने जवाब में कुछ नहीं कहा, हालांकि उसके चलने तक की हिम्मत नहीं थी, फिर भी जैसे तैसे लेडी कांस्टेबल के सहारे वो अपने सेल में आई। वहां आते ही इशिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इशिका को चक्कर आया और वो नीचे गिर गई थी। वहीं ऊपर लैब में क्रिस्टल को चैन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार इशिका का कमजोर चेहरा घूम रहा था। वो खुद को इशिका की मदद करने से रोक नहीं पाई और उसने एक शिपर में आयरन सप्लीमेंट ड्रिंक डाला। क्रिस्टल उसे इशिका के पास ले जाने लगी। वहीं इशिका के बेहोश होने पर लेडी कांस्टेबल जल्दी से उसके पास आई और उसे उठाने लगी। वो उसे उठाते हुए बोली, मिस सिंघानिया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम उठो। लेडी कांस्टेबल ने इशिका के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो इशिका को हल्का होश आने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बेड पर ले चलो। लेडी कांस्टेबल ने इशिका को जैसे तैसे करके उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया था। उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ। प्लीज क्रिस्टल को यहाँ बुलाओ। डॉक्टर क्रिस्टल डिसूजा को बोलो कि अब वो मेरा टेस्ट करें। अब शायद मेरे एनीमिक होने का प्रूफ सामने आ जाए, इशिका ने कांपती आवाज में कहा। डॉक्टर क्रिस्टल गुस्से में है और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आएगी, लेडी कांस्टेबल ने जवाब दिया। इशिका की आंखें नम होने लगी थी। वो रोना चाहती थी पर रो नहीं पा रही थी। एक क्रिस्टल ही थी जो उसकी मदद कर सकती थी। इशिका अपने आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के पहले स्टेज तक पहुंच चुकी थी, जहां उसे कमजोरी महसूस होने लगी थी और चक्कर आ रहे थे। वो ट्रॉमा में नहीं जाना चाहती थी। इशिका ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है फिर आप मेरा ब्लड सैंपल लेकर डॉक्टर क्रिस्टल तक पहुंचा दीजिए। उसे बोलिए कि फिर से टेस्ट कीजिए और इस बार रिपोर्ट में सब सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं फोरेंसिक डिपार्टमेंट से किसी को बुलाकर लेकर आता हूँ, लेडी कांस्टेबल ने जवाब दिया और वहां से जाने लगी। तभी अचानक वो किसी से टकरा गई। ये मालविका थी। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। मालविका को कैदियों के कपड़े में देखकर कांस्टेबल ने सख्ती से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हूँ, वो मेरी बेटी है, मालविका ने इशिका की तरफ इशारा करके कहा। एक पल के लिए लेडी कांस्टेबल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उन दोनों के रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन चेक करके देखा तो उसे यकीन हो गया। उसने मालविका को मिलने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन साथ ही उसे हैरानी हुई कि दोनों माँ बेटी एक ही जेल में हैं। इसका मतलब दोनों ने ही कोई क्राइम किया है। इशिका को अपनी माँ के भरोसे छोड़कर लेडी कांस्टेबल बेफिक्र होकर फोरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। वहीं इशिका इस वक्त अपनी बीमारी से जूझ रही थी। इस इरादे से अनजान की मालविका यहाँ उसे मारने के लिए आई है।